आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ एनडीए के वुजराए आला और नायब वुजराए आला की कॉन्क्लेव की सदारत की। नई दिल्ली ने भारतीय सिफारतकारों पर कनाडा के इल्जाम को बेबुनियाद और सियासत पर मबनी करार दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि भारत और मलावी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने के बड़े मौके हैं। उन्होंने लिलोंगवे में भारत मलावी कारोबारी मीटिंग से खिताब किया। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर हुसैन मोहम्मद अवादा को हलाक करने का दावा किया है। शूटिंग में नई दिल्ली में आईएसएसएफ आलमी कप फाइनल में विवांग कपूर ने ट्रैप मुकाबले में चांदी का तमगा और अननजीत सिंह नारोका ने स्केट शॉटगन में कांसे का तमगा हासिल किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के वुजराए आला और नायब वुजराए आला के एक कॉन्क्लेव की सदारत की। बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में कौमी तरक्की के मामलों पर तवज्जो मरकूज की गई और संविधान का अमृत महोत्सव मनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत बनाने के अहद को मुकम्मल करने के लिए इस मौके पर उन्हें वजीर आजम की तरफ से कई मामलों में रहनुमाई हासिल हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि भगवान बुद्ध की तालीमात न सिर्फ मुफीद बल्कि आज की दुनिया के लिए जरूरी हैं। 21वीं सदी में आलमी सतह पर बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने अक्वामे मुत्तहिदा में दिए गए अपने पैगाम का अदा किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि भगवान युद्ध दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को अपने मसाइल का हल बुद्ध की तालीमात में मिलेगा न कि जंग में। उन्होंने दुनिया से कहा कि वो बुद्ध से सीखें, जंग को मुस्तरद करें और अमन की राह हमवार करें। वजीर आजम आज नई दिल्ली में बैनुल अक्वामी अभिधम्म दिवस और पाली जबान को क्लासिकी जबान के तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक तकरीबात के दौरान एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे।
धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन।
वजीर आजम मोदी ने जोर दिया कि जबान, अदब, आर्ट और रूहानियत जैसे सकाफती सुतून एक मुल्क की शिनाख्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमृतकाल नामी एक काया पलट के सफर पर रवाना हो गया है जो 2047 में मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की दानिशमंदी से रहनुमाई हासिल करके मुल्क की तरक्की का खाका गैर मुतवक्के और मुस्बत तब्दीली लाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार ने पाली जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिया है और इस वजह से इस साल अभिधम्म दिवस की तकरीबात तारीखी हैसियत की हामिल है। कई माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स ने पाली जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिए जाने के सरकार के हालिया फैसले की सताइश की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए एक स्कॉलर डॉक्टर भदांत राहुल ने यह कहते हुए इस फैसले की सताइश की कि इससे पाली जबान के तई अवाम में बेदारी आएगी और मुल्क के नौजवान इससे फायदा उठाएंगे।
समता, बंधुभाव, प्रेम, करुणा, मैत्री को कैसे हमें जगाना चाहिए और कैसे अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण करना चाहिए, ये बात मूल रूप से पाली में तथागत बुद्ध ने कैसे कैसे ढंग से समझाई है। विशेष रूप से युवकों को, विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा।
तारीख की एक तालिबा छाया ने भी पाली जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिए जाने के सरकार के फैसले की सताइश की है। भारत ने कनाडा की सरकार के इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद करार दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने भारत और उसके सिफारतकार के खिलाफ लगाए गए सख्त इल्जामात के सिलसिले में अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। उन्होंने जोर दिया कि ये इल्जामात भारत की साख्त को बदनाम करने के लिए ट्रूडू सरकार की एक सियासी कोशिश नजर आती है।
Canada has leveled serious allegations but has so far not given any evidence to back it up. We would say that as far as the allegations are concerned, PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats.
जनाब जायसवाल ने कहा कि मुजरिमीन को तहवील में लिए जाने से मुतालिक 26 दरखास्तें अब भी कनाडा की सरकार के पास इल्तवा में हैं, जिनमें आर्जी तौर पर हिरासत में लिए जाने से मुतालिक कई दरखास्तें शामिल हैं। गुरजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, अर्शदीप सिंह गिल और लखबीर सिंह लांडा जैसे मुलजमीन इनमें शामिल हैं, जो कि दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात में मतलूब हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत गिरोह मेंबरों से मुतालिक सिक्योरिटी इतलात कनाडा के साथ मुश्तरक की और कनाडा से दरख्वास्त की कि वो उन्हें गिरफ्तार करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार ने अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि तशवीश की बात है। उन्होंने कहा कि भारत पर इल्जाम तराशी से कोई फायदा नहीं होगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि हुकूमत कबायली बिरादरियों की तरक्की के लिए काम करने के तय पुरज़्म है। नई दिल्ली में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन और संकला फाउंडेशन की जानिब से मुनाकिदा ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन के मौके पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज सबका साथ सबका विकास के साथ हाशिए पर मौजूद बिरादरियों खुसूसन कबायली आबादियों की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ये नुमाइश इस बात का मुजाहरा करती है कि किस तरह लोग फितरत के साथ मुकम्मल हम आहंगी से रह सकते हैं।
Through this art, we witness not just creativity, but a very profound message, one that bridges the gap between nature and humanity, a reflection of commitment and resolve to prevent environmental degradation. This exhibition showcases that people can exist, do exist with nature in complete harmony.
हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि खामोश तहफ़ुज हाशिए से मरकज तक के उनवान के तहत मुनाकिदा इस नुमाइश में कबायली बिरादरियों, जंगल में रहने वालों और फितरत के दरमियान मजबूत रिश्ते पर तबादले ख्याल किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और मलावी के दरमियान ज़राअत, कानकनी, तवानाई और सियाहत समेत कई शोबों में आपसी तआवुन बढ़ाने के बड़े मौके हैं। उन्होंने ये बात लिलोंगवी में भारत मलावी कारोबारी मीटिंग से खिताब करते हुए कही। पेश है एक रिपोर्ट।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत मलावी तिजारती मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि भारत और मलावी बेहद दोस्ताना और मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात रखते हैं, जिसमें भारत मलावी में बड़ा तिजारती साझेदार और सरमायाकार है। सदर जमहूरिया ने कहा कि अगले कुछ दिनों में होने वाली दोतरफा और वफूद की सतह की मुलाकातों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने दोनों ममालिक की तिजारती बिरादरी से अपील की कि वह भारत और मलावी के इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए तालमेल के साथ काम जारी रखें। बाद में सदर जमहूरिया एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगी और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया कल मालावी जमहूरिया के सदर लाजारूस चकवेरा के साथ दोतरफा और वफूद की सतह की बातचीत करेंगी। लिलोंगवे से मयूषा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं जमीर रजवी।
सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि भारत 1964 में मलावी की आजादी के फौरन बाद उससे सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले पहले मुल्कों में से एक था। उन्होंने कहा कि भारत और मलावी के दरमियान तिजारती ताल्लुकात तारीखी हैं। भारत फिलहाल मलावी का चौथा बड़ा तिजारती शराकतदार है और भारत मलावी में सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक है। सदर जमहूरिया ने जोर दिया कि भारत और मलावी कई शोबों में तालमेल हासिल करने के लिए एक साथ आ सकते हैं।
द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलावी हैज बीन ग्रोइंग डिस्पाइट कोविड पेंडेमिक। इंडिया इज करेंटली द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मलावी एंड इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन मलावी विथ ओवर 500 मिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स।
इससे पहले द्रौपदी मुर्मू तीन अफ्रीकी मुल्कों के ہفتے بھر طویل دورے کے آخری مرحلے میں ملاوی پہنچی۔ بھارت کی صدر جمہوریہ کا ملاوی کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وہاں پہنچنے پر صدر جمہوریہ کو باقاعدہ استقبالیہ دیا گیا۔ دورے کے دوران صدر جمہوریہ ملاوی میں تاریخی اور ثقافتی اہمیت کی حامل جگہوں کا معائنہ کریں گی، جن میں قومی جنگی میموریل، مقبرہ شری رادھا کرشن مندر اور لیک ملاوی شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ ڈرافٹ کردہ نیشنل اسپورٹس گورننس بل 2024 ملک میں مضبوط اور کھیلوں میں شفاف نظم و نسق کے ڈھانچے کے قیام کی جانب انقلابی قدم ہے۔ نئی دلی میں آج مشاورتی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ اس قانون کا مقصد ایتھلیٹ پر مرکوز فیڈریشنوں کو با اختیار بنانا، محفوظ کھیل پالیسی کو متعارف کرانا اور اسپورٹس اپیل ٹرائبونل قائم کرنا ہے۔ میٹنگ میں بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن، نیشنل اسپورٹس فیڈریشن اور نیشنل اسپورٹس پروموشن آرگنائزیشن کے نمائندوں نے شرکت کی اور ڈرافٹ بل پر غور و خوض کیا۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کے تحت 13 نومبر کو ریاست کے 43 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 25 اکتوبر ہے۔ کاغذات کی جانچ 28 اکتوبر کو کی جائے گی، جبکہ 30 اکتوبر تک امیدواری واپس لی جا سکتی ہے۔ جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے کی پولنگ 20 نومبر کو ہوگی، ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ حکومت نے ریل گاڑیوں میں ایڈوانس ریزرویشن کی موجودہ مدت کو 120 دن سے گھٹا کر 60 دن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ نیا ضابطہ یکم نومبر سے نافذ العمل ہوگا، تاہم 31 اکتوبر تک کی گئی تمام بکنگز پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے 365 دن کی حد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے آسام میں تارکین وطن کو بھارتی شہریت فراہم کرنے کے 1955 کے شہریت قانون کی دفعہ 6A کی آئینی حیثیت کو 1 کے مقابلے 4 کی اکثریت سے برقرار رکھا ہے۔ سال 1985 میں متعارف کرائے گئے آسام سمجھوتے میں یہ گنجائش فراہم کی گئی تھی، تاکہ آسام میں مخصوص تارکین وطن کو شہریت فراہم کرنے کے لیے لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ اتر پردیش پولیس نے آج بہرائچ ضلع میں اس مہینے کی 13 تاریخ کو ایک نوجوان کی ہلاکت کے سلسلے میں 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ 3 قصورواروں محمد سرفراز، محمد فہیم اور عبد الحامد کے نام اس سلسلے میں دائر ایف آئی آر میں درج ہیں۔ نیپال سرحد کے قریب نانپاڑا علاقے میں ایک پولیس ٹیم کے انکاؤنٹر کے بعد محمد سرفراز کو محمد تسلیم کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرائچ کی ایس پی وریندا شکلا نے کہا ہے کہ دونوں قصوروار تصادم میں زخمی ہوئے ہیں، جو نیپال بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دونوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ درگا وسرجن کے دوران بہرائچ ضلع کے ہردی علاقے میں ہونے والے تشدد کے واقعے میں پولیس 25 سے 30 لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آج لبنان میں حزب اللہ بٹالین کے کمانڈر حسین محمد عوادہ کو مار گرایا ہے۔ ایک بیان میں آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ عوادہ، جو لبنانی شہر بنت جبیر کے نزدیکی گاؤں سے اسرائیلی حدود میں کیے جا رہے منصوبہ بند حملوں کی نگرانی کر رہا تھا، اسرائیلی فضائیہ اور آرٹلری فورسز کے حملے میں مارا گیا۔ آئی ایس ایس ایف نشانے بازی عالمی کپ فائنل میں بھارت کے ویوان کپور نے آج دوپہر نئی دلی میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ ویوان نے فائنل میں 44 نشانے لگائے اور سونے کا تمغہ جیتنے والے یم کی کے بعد دوسرے نمبر پر رہے۔ وہیں ترکیے کے ٹولگا اینٹونسر نے 35 کے سکور کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا۔ اس سے پہلے اسکیٹ فائنل شاٹ گن زمرے میں انت جیت سنگھ نروکا نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ بیڈمنٹن میں 2 مرتبہ کی اولمپک فاتح بھارتی کھلاڑی پی وی سندھو ڈنمارک اوپن کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں چین کی کھلاڑی ہین یوئی کو 18-21، 21-12 اور 21-16 سے شکست دی۔ پی وی سندھو مقابلے میں رہ گئی واحد کھلاڑی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے چنڈی گڑھ این ڈی اے کے وزرائے اعلی اور نائب وزرائے اعلی کے کانکلیو کی صدارت کی۔ نئی دلی نے بھارتی سفارتکاروں پر کینیڈا کے الزامات کو بے بنیاد اور سیاست پر مبنی قرار دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا کہنا ہے کہ بھارت اور ملاوی کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بڑے مواقع ہیں۔ انہوں نے لیلونگوے میں بھارت ملاوی کاروباری میٹنگ سے خطاب کیا۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر حسین محمد عوادہ کو ہلاک करने का दावा किया है। शूटिंग में नई दिल्ली में ISSF आलमी कप फाइनल में विवांग कपूर ने ट्रैप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता और अनंतजीत सिंह नारोका ने स्किल शॉटगन में कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।